दत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम्।
हरिः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यम इदं सर्वम्। पिछले कहीं दिनों से हम ये वेद के मंत्र को बहुत प्रेम ज्ञान और चिंतन के साथ घूंट रहे हैं, जिसे आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेद उनकी जो औषधियां है वो तभी प्रभावित होती है जब वैद्य के मार्गदर्शन अनुसार वही औषधियां को एक बार, दो बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार घोंटते ही जाओ। जैसे खरल पे रख के वो औषधियों को बार बार घोंटते हैं, वैसे एक ऊर्जा, एक ताकत अपने आप प्रकट होती है। वैसे ही कहीं सूत्र हमारे शास्त्रों के ऐसे है, घुटते घुटते एक बार अंतर में बैठ गया तो समय समय पर हमारे जीवन में बहुत काम आता है। और ऐसा ही एक ये सूत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो कुछ है ये सब ईशावास्यम, ईश नाम सर्वनियंता, सर्व के प्रेरक प्रकाशक जो परमात्मा है उनसे व्याप्त है, उनकी सत्ता के अधीन है। और ईश सर्वनियंते, ईश शब्द से सर्वनियंता लेने से क्या होगा? हमारे लिए पीड़ा की दो बातें हैं, एक हमारे लिए और एक दूसरे के लिए। अन्य परतंत्रत्वम, ये भी एक दुख है, दूसरों के अधीन वर्तना, दूसरों की इच्छा अनुसार जीना, एक ये दुख है। और दूसरा स्वतंत्र भ्रम, वो भी एक दुख है। हम स्वतंत्र हो गए तो दूसरों को पीड़ा, दूसरों के अधीन हो गए तो हमें पीड़ा। और यही दोनों प्रकार के जो भ्रम है उनके निवारण के लिए उपनिषद के प्रारंभ में ही कह दिया कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईशावास्यम इदम सर्वम। एक जो सुप्रीम ऑथोरिटी है उनके ही सब अधीन है, उनसे ही सब कुछ होता है, वो ही सर्वनियंता है, वो ही करता है, उसका मतलब तुम किसी और के अधीन नहीं हो। वरना ये लोक में ये भी बहुत पीड़ा की बात है, क्या करे, हमें परिवार ही ऐसा मिला है, क्या करे, हमारा गांव ही ऐसा है, अरे हमें तो बहुत कुछ करना है मगर क्या करे, ऐसे देश में रहना पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है, राजा ऐसे है, सब कुछ करना है किंतु घरवाली ऐसी मिली है। तो ये सभी चिंता और भ्रम के निवारण के लिए वेद ने बता दिया कि तुम चिंता मत करो, ईशावास्यम इदम सर्वम, तुम किसी और के अधीन नहीं हो, ईशावास्यम, एक ईश, एक सर्वनियंता है, वो ही करता हरता है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यदि वो ही करते हैं तो भला ये दुनिया ऐसी क्यों, और दुनिया के बारे में हम यदि किसी को पूछे कि कैसा लगता है, ये सृष्टि ऐसी है, उनके लिए सबके अनंत मंतव्य होंगे, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो ऐसा क्यों, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक सुखी है, एक दुखी है, एक के जीवन में आनंद नहीं समाता और एक के लिए आनंद की क्षण आना ही बहुत रेयर है, बहुत दुस्साध्य है, तो भगवान ने भला ऐसी सृष्टि क्यों बनाई। ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, श्री रमन जी, वो ही तो रिस्पॉन्सिबल है, तो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, यही है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो ही तो सर्वनियंता है, वो ही तो करता है, जैसे आकाश से बारिश बरसती है, वो तो समान रूप से बरसती है, एक खेत में जो बारिश पड़ती है तो वो भी समान रूप से पड़ती है, किंतु वही बारिश से गेहूं पकते हैं, चावल पकते हैं, अच्छे फल फूल साग भाजी पकते हैं, और एक सिंगड़ियों वचना करके आता है जहर, जहर के पेड़ पौधे भी वही जल से ही विकसित होते हैं, आंबा आंबली लिंबड़ा सरघवा सीताफली सेलड़ी द्राक्ष दाड़म कौठ कौच कदली वृक्षों तथा वेलड़ी, सर्वे एकज पृथ्वी नु जल पिए सर्वे समीपे रहे, जेवो जाति स्वभाव हो ये जगमा तेवा गुणों तेल है। आम का पेड़, इमली का पेड़, नीम का पेड़, मिर्ची का पेड़, गन्ना, सब पास पास में रहता है, किंतु जैसा उनका बीज है, जैसी उनकी जाति और स्वभाव है, वैसा ही फल आएगा। तो वर्षाद तो बारिश तो एक जैसी है, किंतु जैसा बीज वैसा पाक। जीव के जो कर्म है, जीव के जो संस्कार है, उनके अनुरूप जीव की बढ़ोती होती है, उनके अनुरूप जीव नीचे गिरता है। दूसरा दृष्टांत, ये कोई कंपनी होती है और वो कंपनी का जो ओनर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, पगार देना, कर्मचारी को वेतन देना, उनके लिए कंपनी का जो मालिक है वो रिस्पॉन्सिबल है, सबको देना चाहता है, अच्छा सा देना चाहता है, किंतु किसको कितना पगार मिलेगा
वो कैसे तय होगा? तो कि जिसमें जितनी कार्य क्षमता, जिसका जितना कार्य, जैसा कार्य करेगा वैसा ही उनको पगार मिलेगा। आज ही सुबह हमारे पूज्य स्वामी जी ने कथा में कहा यह दृष्टांत, मतलब कि जीव जैसे करता है उसके अनुरूप कर्म और संस्कार होते हैं, और परमात्मा का तो यही काम है। जैसे मालिक का काम है कि सबको वेतन देना, तो परमात्मा का यही काम है कि सबको देना, कोई भेदभाव नहीं है, किंतु तुम जितना करो उतना हम देंगे। तो अंत में ये तो हुआ कि सब कोई करने वाला, सर्व कर्म के फल प्रदाता तो एक ही है, और वो कौन है? वो ईश है, और इसीलिए तुम अकेले नहीं हो। ईशावास्यम इदम सर्वम, तुम्हारे ऊपर दूसरे किसी का आधिपत्य नहीं, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम। और यही ज्ञान जब हो जाता है तब कोई भी अध्यात्म मार्ग में चलने वाले पथिक के जीवन में यह बात देखी जाती है कि वो निर्भीक हो जाता है। सत्य की उपासना जीव करे तो सत्य क्या देता है? पहला ही निर्भीकता देता है। यदि हम सत्य के पक्ष में है तो हम निर्भीक हो जाएंगे। जीवन में जहां जहां भी भय है, जहां जहां भी चिंता है, कॉन्फिडेंस का अभाव है, बहुत कुछ करना है मगर कुछ ना कुछ आके हमें रोक लेता है, तो यही बताता है कि हम कहीं ना कहीं गलत है। हमारे जीवन में रही गलतियां ही हमें कहीं ना कहीं रोकती है। एक बार जीवन में सत्य आ गया, हमारे आचरण में सत्य आ गया, हमारी वाणी और विचार में सत्य आ गया, तो सत्य का पहला ही धर्म है कि हमें वो निर्भीक बना देता है। जैसे भारत रत्न में महात्मा गांधी जी हुए, दीदी हमें आजादी बिना खड़ग, बिना साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाथ में कोई खड़ग नहीं, कोई गन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये पुरुष ने भारत जैसे बड़े राष्ट्र को आजादी दिला दी। कौन सा बल था? कितनी चिट्ठियां गालियां की लिखी हुई आती थी, कितनी बार कितने सालों जेल में रहे, कितने कष्ट, कितनी मुश्किलियां, और फिर भी देखो कोई बॉडीगार्ड नहीं। कल ही ऐसा सुना था कि देश के बड़े बड़े एक्टर है, सालाना बॉडीगार्ड के लिए 2 करोड़ का खर्चा करते हैं। कितना? 2 करोड़ का। वही बॉडीगार्ड जैसे है, फिर भी बॉडीगार्ड रखना पड़ता है, सालाना 2 करोड़ का खर्च उनके पीछे करते हैं लोग। देखो गांधी जी के पास कौन बॉडीगार्ड था? कोई नहीं, कोई नहीं। राष्ट्रपिता बन गए और कोई व्यक्ति सामने से आता है और जाहिर में सबके सामने गोली मार देता है, कितने निर्भीक घूमते थे। ये निर्भीकता कहां आई, कहां से आई? आजकल कोई बोलते हैं कि बॉर्नविटा का दूध पियो, ऐसा पियो तो तुम्हारे शरीर में बल आएगा, मन में बल आएगा। गीर गाय का भी नहीं, महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। कोई बहुत बीमार रहता है जिसका उधर कुछ पचाने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो वैद्य बताते हैं कि ये दवा आप बकरी के दूध के साथ लेना, गोट। अब देखो बकरी का दूध पीने वाले, खजूर की 5 पेचियां खाने वाले ऐसे महात्मा गांधी, बदन ढके उतने वस्त्र नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हाथ में लकड़ी है, और ऐसे ही नंगे पाव ये महापुरुष घूमते हैं, किंतु पूरी अंग्रेज सल्तनत उनसे थरथराती थी। विंस्टन चर्चिल जिन्होंने ये वी फॉर विक्ट्री का दिया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और हिटलर को भी हराने वाले ये इंग्लैंड के ये विंस्टन चर्चिल, और उनके लिए तो ऐसा कहा जाता था, द सन डज नॉट सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशरों के राज्य में कभी सूर्य अस्ताचल में नहीं जाता था, जहां उजाला हो पृथ्वी के गोले में भी उनका राज्य तो था ही था। तो वो जमाने में भारत जब गुलाम था, यहां बड़े बड़े अधिकारी गवर्नर को भेजते थे, किंतु एक बात तो चर्चिल उनको अवश्य बोलते थे, आप भारत में जाओ सब कुछ करो, बट किंतु एक बात का ध्यान रखना, डू नॉट मीट टू महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, डोंट मीट टू महात्मा गांधी, दैट पर्सन हैविंग दैट मच विल पावर, ही इज हैविंग दैट मच डिवोशन, पांच दस मिनट भी महात्मा गांधी की बात सुनी तो तुम्हारा माइंड हिप्नोटाइज हो जाएगा, कोरा कागज देगा तो भी तुम साइन कर दोगे, स्क्रिप्ट तो वो पीछे लिखेंगे। इसलिए डोंट मीट टू महात्मा गांधी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बट आई अफ्रेड ऑफ हाफ नेक्ड गांधी, मैं महात्मा गांधी से डरता हूं। क्या था महात्मा गांधी जी के पास? बस यही सत्य, सत्य तो हमारे पक्ष में है, भगवान तो हमारे पक्ष में है, किंतु हम सत्य के पक्ष में है या नहीं, ये हमें देखना है। और ये सत्य आ गया तो सत्य का पहला धर्म है निर्भीकता, आप निर्भीक हो जाओगे। डर ही हमें नए साहस करने में रोकता है, डर ही ऐसा है कि हमें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत कुछ करना है नहीं, किंतु नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई डर है, और डर कहां से आता है? तो अंतर में कुछ कमियां है, और यही कमियां कैसे दूर होंगी? तो कि धीरे धीरे हमें सत्य के नजदीक जाना है, सत्य की ओर जाना है। यही सत्य क्या है? ईश है। और इसलिए उपनिषद के प्रारंभ में ही कह दिया, तुम्हें निर्भीक होना है। कैसी कैसी सत्य की उपासना का फल मिलता है ये पूरे उपनिषद में हम आगे देखेंगे, किंतु पहले ही कह दिया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब है, ये सब कुछ ईशावास्य है, ईश से व्याप्त है। इसलिए मैं दूसरे के अधीन नहीं हूं, वो डर मन से निकाल लो, आप सब एक के ही अधीन हो, वो है ईश। और जैसे कोई राजा है, उनके अधीन पूरी प्रजा रहती है, किंतु कुछ करना है तो प्रजा के मन में बहुत भय रहता है। जैसे मास्क नहीं पहनेंगे तो दंडा पड़ेगा, 1000 रुपये का मेमो पकड़ा देगा। तो आदमी नियम पालन करता है तो भी भय से पालन करता है। इसलिए ईश परमात्मा के लिए कहा कि तुम डरो नहीं, चिंता करो नहीं, वो तो भक्त वत्सल है, परम कृपालु है, परम करुणा मूर्ति है, प्रेम के सागर समान है, और ऐसे परम प्रेमास्पद ईश है, वो ही सबके नियंता है। हमारे सब शास्त्रों ने, खास करके भक्ति मार्गीय संप्रदायों ने, ये भगवान के गुणों का, ऐसे माधुर्य आदि गुणों का ऐसा वर्णन किया है कि यही गुण हमें भगवान के नजदीक ले जाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, तुम दूसरे किसी और के अधीन नहीं हो, एक ईश का साम्राज्य है तुम्हारे ऊपर, और इसीलिए उनके अधीन हो, इसलिए दूसरी बात कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, अन्य परतंत्र भी नहीं हो और स्वतंत्र भी नहीं हो। क्यों ऐसा? जब हम मानने लगते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं तो सभी प्रकार के पाप मार्गों का प्रारंभ होता है, और यही गलत निमित्त ही हमें गलतिया की ओर ले जाती है और उनके फल स्वरूप हमें दुख मिलता है। मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कौन कहने वाला, मुझे कौन रोकने वाला, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ये पैसा तो मेरा ही है ना, ये पैसे से मैं जो चाहूं वो खरीदूं, जो चाहूं वो खाऊं, जो चाहूं वो करूं, मुझे कौन 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 पूछने वाला। और यही जो स्वतंत्र ब्रह्म है वही हमें गलत निमित्तों की ओर धीरे 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 करके ले जाता है, और इसीलिए पहले ही उपनिषद ने कह दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वं, ध्यान से सुनो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे ऊपर किसी का आधिपत्य है और वो भी किसी और का नहीं, एक जगन नियंता करता हरता वो है, उनका आधिपत्य है। इसलिए ये दो प्रकार के भ्रम हुए, मैं अन्य परतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र हूं, ये दोनों भ्रम की निवृत्ति होती है ईशावास्यमिदं सर्वं ये सूत्र से। ईशावास्यम, ईशावास्यम इदम सर्वम, आपको ये अर्थ तो समझ में आ गया होगा कि ईश नाम सर्वनियंता, सर्व कारण, अस्तित्व का आधार परमात्मा। दूसरा शब्द है वास्यम, वास्यम अर्थात व्याप्तम, ईश से वास्यम है, नाम व्याप्तम है, व्याप्तम और धार्यत्वम दो शब्द है। एक तो व्याप्तम अर्थात ईश है, वो अणु अणु में व्याप्त होके रहा है, अणु अणु में उनकी सत्ता है, अणु अणु में सत्ता है, तो उनका फल क्या, क्यों अणु अणु में रहे हैं, तो के बोले धार्यत्वम, अणु अणु को धारण करने के लिए भगवान अणु अणु में रहे। जैसे कीर्तन है, मारी मर्जी विना रे कोई थी तरणो नव तोड़ाय, एम मने जान जो रे मारा आश्रित सौ नर नारी। स्वयं परमात्मा कहते हैं, मारी मर्जी विना रे कोई थी तरणु नव तोड़ाए, छोटा सा घास का तिनका रहता है ना, यदि मेरी इच्छा नहीं तो कोई तिनके को भी हिला नहीं सकता, और ये कोई बनाई बात नहीं, पूरा उपनिषद, इनके बाद जो केनोपनिषद आने वाला है, केनोपनिषद का प्रधान विषय ही यही है। देवताओं को भी जब मान गर्व आ गया तो भगवान आ गए यक्ष के रूप में, तो यक्ष तो स्वर्ग लोक का छोटा सा देव, जैसे हमारे यहाँ काम वाले होते हैं, तो स्वर्ग में यक्ष राक्षस किन्नर गांधर्व ये सब प्रजातियां है अलग अलग, तो यक्ष है वो तो सेवक वर्ग है, तो यक्ष के रूप में भगवान आ गए और बोले कि ये सब क्या अभिमान है, तो बोले हम जीत गए असुरों के सामने, ऐसा हुआ, बहुत लंबी कथा नहीं करेंगे क्योंकि वो उपनिषद में करेंगे। तो भगवान ने बोला अच्छा तुमने किया, तो कि हाँ, तो भगवान ने एक तिनखा रख दिया, अग्नि बहुत अभिमान करते थे तो बोले कि अब ये छोटे से तिनके को जला दो, बहुत प्रयास किया कुछ नहीं हुआ, वायु बोला कि मैं तिनके को उड़ा सकता हूं, बहुत जोर किया हिला भी नहीं सका, जल गला भी नहीं सका, और सब देवता निराश हो गए और हाथ जोड़ दिया, हमें तो हमसे तो कुछ भी नहीं होता। तब भगवान ने बोला, सोचो केन, केन नाम किसके द्वारा, अब सोचो ये सब कौन करने वाला है। इसीलिए ये उपनिषद का नाम पड़ गया केनोपनिषद। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः, केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन किसकी प्रेरणा से संकल्प विकल्प करता है, प्राण किसकी प्रेरणा से चलते हैं, ये एक एक इंद्रिया किसकी प्रेरणा से विषय भोग में समर्थ होते हैं, तो ये उपनिषद के अंदर ये विचार किया गया है। तो सब वो ही करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो के ईशा वास्यम, वो ईश है, वो परमात्मा है, वास्यम वो अणु अणु में व्याप्त रहता है, अंदर रह के क्यों धारण करता है, व्याप्यस्य फलम विधरणम, अंदर व्याप्त होने का फल क्या है, तो कि विधरण, सबको धारण करके रखना। धारण करने वाला कोई तत्व तो चाहिए। देखो सिंपल दृष्टांत, आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपने आजू बाजू में दृष्टि करो, क्या है, मकान है, फर्नीचर है, लाइट पंखा सब कुछ साधन सामग्रियां है, तो ये सब जो कुछ भी चीजें बनी है, चाहे लोहे की हो, लकड़ी की हो, या पत्थर, ईंट पत्थर रेती की हो, तो उनमें एक तत्व है वो सबको जोड़ के रखता है, वो है जल। जल का स्वभाव है पिंडीकरण। न्याय शास्त्र कहता है कि पिंडीकरण करना ये जल का कार्य है। जैसे हम आटा लेते हैं, रोटी बनानी है तो पहले गेहूं का आटा लेते हैं, तो गेहूं का तो आटा होता है वो भी अलग अलग होता है, उनके एक एक कण, उनमें हम नमक डाले तो भी अलग रहता है, उनमें मोण के रूप में तेल या घी डाले तो भी एक तो नहीं होता है, पर उनमें जब हम जल मिलाएंगे, पानी डालेंगे, तो वो आटा है उनका पिंडीकरण हो जाएगा, वो एक रस हो जाएगा। तो जैसे गेहूं के लोट का पिंडीकरण करते हैं, वैसे दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, किंतु सभी तत्व में, पृथ्वी तत्व में जल मिलता है, तभी जल के कारण ही ये पृथ्वी तत्व का पिंडीकरण होता है। अब देखो, दिखाई पड़ती है पृथ्वी, किंतु जल की दृष्टि से अब यही चीजों को देखो तो जल के बिना कुछ है ही नहीं। यदि उनसे जल निकल जाए तो ये जो पिंडीकरण दिखाई पड़ता है वो रहेगा ही नहीं। समझ में आया? तो एक एक पदार्थ का अस्तित्व बना रहे उनके लिए एक स्केल में जैसे जल कारण है, उनसे आगे बढ़े सूक्ष्म दृष्टि करे तो जल की दृष्टि, तेज की दृष्टि से देखे तो जल भी कुछ नहीं है, तेज के बिना ये अस्तित्व नहीं रहेगा, उनके आगे जाओ तो वायु के बिना नहीं रहेगा, उनके आगे जाओ तो स्पेस तो चाहिए कुछ घटित होने के लिए, तो आकाश के बिना कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कारण तत्व की मीमांसा करो तो ईश है, सर्वनियंता है, सबके कारण है जो परमात्मा है, वहां जाके ही ये यात्रा रुकती है। और यदि उनको वहां से निकाल लो तो कोई भी तत्व में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहता। तो ये सबको धारण करके रखने वाला तत्व कौन है? तो वो ही ईश है। और केवल ये मंत्र से नहीं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, श्रुति स्मृति, पुराण, सबका सार और सबका मनन चिंतन करेंगे तो यही सिद्धांत अपने आप उनसे फलित होगा। सभी शास्त्र मात्र ऐसा बोलते हैं। तो ईशा वास्यम, वो ईश है, वो सब में वास्यम नाम व्याप्त रहता है। व्याप्त रहते क्या करण करता करता है? तो के धार्यत्वम, वो सबको अलग अलग रूप से धारण करता है। जो सर्वनियंता है उनको सबको मैनेज करना है। एक चींटी यहां से वहां जाती है तो अंदर से ये चींटी को भी प्रेरणा करने वाले वो है, उनके मार्ग में आधार भी वो है और कहाँ जाना है वो भी वो ही है, तभी तो मैनेज कर पाएंगे। एक चीज को बनानी है, बनाने के बाद यहां से वहां ले जानी है, तो यहां भी वो अंदर होने चाहिए, वहां भी वो होने चाहिए, प्रेरक प्रकाशक भी वो होने चाहिए, तभी तो ये सब वो कर सकते हैं, उनके सिवा तो दूसरे कोई करता नहीं है। तो अणु अणु में व्याप्त है, उसका मतलब है कि व्याप्यस्य फलम विधरणम, सबको धारण करके रखते हैं। और कैसे धारण करके रखते हैं? तो कि एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। मिक्स होने का मतलब है पृथ्वी जल में मिक्स हो जाती है, ऐसा नहीं। हमारा कर्म कुछ और है, इनका कर्म कुछ और है, इनका कर्म कुछ और है, आपका कर्म कुछ और है, आपका कर्म कुछ और है, सबके कर्म भिन्न भिन्न है। यदि वो अंदर नहीं रहेंगे तो किसके पास क्या करवाना है वो निर्णय कौन लेगा? जैसे भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा अंत्य के अंतिम वचनामृत में ऐसा बोला कि एक सृष्टि के नियंता परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। और बाद में बोले कि क्यों दो नहीं है, यदि दो होते तो जैसे हमारे यहाँ दो व्यक्ति में डिस्प्यूट होता है, ये करो तो दूसरा बोला नहीं ये करो, ऐसे करो तो बोला ऐसे नहीं ऐसे करो, करना तो दोनों की ही है किंतु प्रोसेस अलग ही रहती है हमेशा। देखो तो वैसे वहां भी होगा, यदि दो परमात्मा हो गए तो एक परमात्मा बोले कि बारिश बरसाओ, इंद्र को आज्ञा करें, तो दूसरे परमात्मा बोलेंगे कि नहीं बारिश नहीं बरसानी है। एक बोले ये करो, दूसरा बोलेंगे ये नहीं करो। तो ऐसा जगत में है नहीं, सब एक के ही अधीन है। क्यों? इसीलिए बोलते हैं कि ईशा वास्यम इदम सर्वम, वो ही सबके आधार में है, वो ही सबको धारण करके रखते हैं। और इसलिए वास्य है, इसलिए अपने आप में ही ये सब कुछ रहा है। इसलिए विष्णु पुराण का पहले स्कंद का बहुत अच्छा एक श्लोक है, भगवान वासुदेव का परिचय देते हैं। सर्वत्रासौ समस्तम च वसत्यत्रेति वैयतः ततस्य वासुदेवेति विद्वत् भिः परिपठ्यते। ये जो वास्यम शब्द आया, सब में वो वास्य है इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वत्रासौ समस्तम च वसत्यत्रेति वैयतः, सर्वत्र सर्वत्र अर्थात सब जगह में वो है, सब चीज में वो है, समस्तम और सब कुछ वो है, सब में है और सब कुछ है, सब उनमें है और वो सब में है। तो सर्वत्र असौ समस्तम च असौ, वो सब में है और सब उसमें है। सर्वत्र असौ समस्तम च वसति अत्र इति वैयतः, इसीलिए तथा स वासुदेवेति, और इसलिए ये भगवान का एक नाम पड़ गया वासुदेव, वासुदेव श्री कृष्ण। ये जो वासुदेव शब्द है, हम बोलते हैं कि वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेव, वसुदेव के पुत्र थे इसलिए वासुदेव नाम था, ये भी एक अर्थ है। और दूसरा ये भी अर्थ है कि सब में वो व्याप्त रहते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव है। तो ईशा वास्यम, वो सब में है इसलिए वो ईश है, वो ही सब में है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम अन्य परतंत्र नहीं हो, उनके ही अधीन हो। कुर्सी ले ली, उनके ही अधीन हो। ईशा वास्यम, और दूसरा कि तुम ईश के अधीन हो, उसका मतलब कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। ईशा वास्यम, वास्यम अर्थात व्याप्तम, वही ईश परमात्मा कैसे कार्य करते हैं? तो वो परमात्मा अणु अणु में व्याप्त होके रहते हैं, अणु अणु में है। हमारी दृष्टि गोचर ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, तो तीसरा शब्द आता है ये मंत्र का, ईशा वास्यम। ईश कहां वास्य करके व्याप्त करके रहता है, तो बोलते हैं कि इदम सर्वम, इदम सर्वम। ये इदम सर्वम क्या है और कैसे जगत में ये भगवान व्याप्त होके रहते हैं, और व्याप्त होके भगवान रहते हैं तो ये कैसे कार्य करते हैं, भगवान ही करते हैं तो ये जगत से हमें नहीं चाहिए ऐसा परिणाम मिलता है, ऐसा व्यक्तियों का कष्ट दुख मिलता है, तो इनका क्या कारण है, तो ये सब प्रश्नों के ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, ईशा वास्यम इदम सर्वम ये सूत्र कल पूर्ण करेंगे। यहाँ विरमगाम के पास वर्णिंद्र धाम पाटड़ी में बहुत बड़ा मंगल महोत्सव त्रिदिनात्मक था, इसलिए यहाँ आना हुआ, इसलिए एक पाठ परसों की रजा हुई, किंतु अब ये ईशावासी उपनिषद के ऊपर हम रेगुलर चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी का आगे देखेंगे। अस्तु, जय स्वामीनारायण।